भूमि फिर से मायूस हो जाती है और इस बार उसने तीसरा कोट निकाला और आकाश को दिखाया। तो आकाश ने और अजीब चेहरा बनाते हुए ना में सर हिलाया। भूमि को गुस्सा आ जाता है। वो आकाश की पूरी अलमारी खोल देती है और उसके सारे कोट को अपने हाथों में लेकर आकाश के सामने आ जाती है। वो ड्रेसिंग टेबल पर सारे कोट को पटकते हुए कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो है कि आपको पसंद क्या करना है। आपके पास 17 कोट हैं और सारे के सारे ब्लैक कलर के। अब इन सारे ब्लैक कोटों में आपको कौन सा वाला ब्लैक चाहिए? मुझे वो कोट चाहिए जिसका रंग तुम्हारी आंखों के जैसा हो। आकाश के ऐसा कहने पर भूमि शर्मा जाती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था आकाश के मुंह से ऐसे रोमांटिक शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं। वो शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करता है। भूमि घबरा जाती है। उसके चेहरे पर ये घबराहट आकाश को अच्छी लग रही थी। उसने झुककर भूमि के कानों में हल्की सरगोशी के साथ कहा, शाम को तैयार रहना, हम डिनर पर साथ चलेंगे। भूमि का चेहरा और लाल हो जाता है और वह अपने हाथ को आकाश के हाथ से छुड़वाते हुए कमरे से भाग जाती है। उसके इस तरीके से भागने पर आकाश हंसने लगता है, पर जब भूमि कमरे से चली जाती है तो उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई और उसने भूमि को जाता हुआ देखते हुए मन में कहा, तुम्हारा यही विश्वास तो मुझे जीतना है वाइफी। वो क्या है ना, राजा साहब ने एक शर्त रखी है कि राज्य मुझे तभी मिलेगा जब तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से सिंहासन पर बैठोगी, और तुम्हारी मर्जी लेने के लिए तुम्हारा मुझ पर विश्वास होना जरूरी है। मानता हूँ कि शादी में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये भी मानता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जो सोचता था वो गलत था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम वो नहीं हो जो मुझे हासिल कर सको। मुझे पाने का ख्वाब तो बहुत लोगों ने देखा है, पर ख्वाब ख्वाब बनकर ही रह गया है। उस ख्वाब का हकीकत होना नामुमकिन है, और तुम्हारा इस्तेमाल मैं सिर्फ सिंहासन हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे सिंहासन मिल गया उस दिन सारे फैसले मेरे हाथ में होंगे, और उस दिन मैं सबसे पहले फैसला लूंगा तुमसे अलग होने का। जेनी के पास पैसे आ गए थे और पैसे मिलने के साथ ही उसने जो पहले काम किया वो ये था कि उसने आसपास पता करके लोकल गुंडे को कॉन्टैक्ट किया था। उसके बाद जेनी ने सबसे पहले आकाश के बारे में पता लगाने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि आकाश दरअसल सिंघल में अपने महल में रहता है और वो इस वक्त सिंघल का राजकुमार है। वैसे तो आकाश की सारी जिंदगी ही ऐशो आराम में गुजरी है और उसने राजा महाराजा वाली जिंदगी बसर की है। ये बात तो जेनी अपनी आंखों से ही देख रही थी, लेकिन जब उसने ये सुना कि आकाश सच में ही कहीं का राजकुमार है और उसे बहुत जल्द वहां का राजा बनाया जाएगा, तो वो हैरान हो जाती है। जेनी ने गुस्से में आकाश को याद करते हुए अपने मन में कहा, नहीं स्काई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और अब तो तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। तुम ऐसे में मुझे नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हें मेरा होना ही होगा, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा है तो जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो रहे हो मैं उस वजह को ही मिटा दूंगी। वो लड़की, मैं उसे जान से मार दूंगी ताकि तुम फिर मुझ तक आ सको। मैं हमारे रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगी। स्काई, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। जेनी नफरत की आग में जल रही थी। उसके पास अब आकाश और भूमि की शादी की पिक्चर्स थीं और वो भूमि को नफरत की निगाहों से देख रही थी। दूसरी तरफ जब संदीप को जेनी के भाग जाने का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक आकाश को जेनी के इंडिया में होने का पता नहीं चला था। उसे एहसास हो गया था कि अगर जेनी यहाँ से भागी है तो जरूर कुछ बड़ा करेगी जिसकी वजह से आकाश और भूमि को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब जेनी वहां से भाग चुकी थी, हो ना हो वो जरूर आकाश तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसलिए संदीप ने खुद आकाश को इस बारे में बताने का फैसला किया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और अगले ही पल सिंघल के लिए निकल जाता है। भूमि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। शाम को उसे आकाश के साथ डिनर के लिए जाना था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने वही साड़ी पहनी हुई थी जो आकाश का फेवरेट कलर था। हल्के ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ वो साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। भूमि ने उसके साथ मैचिंग चूड़ियां पहनी, कानों में छोटे से झुमके और गले में बहुत छोटा सा पेंडेंट। पर तभी उसकी नज़र उस मंगलसूत्र पर जाती है जो आकाश ने उसे पहनाया था, ए और बी अल्फाबेट के साथ। भूमि अपने मंगलसूत्र को छूते हुए मुस्कुराने लगती है। आकाश के साथ उसका जो हसीन समय गुजरा था वो उसे याद करके और शर्म से लाल हो गई थी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गुस्से में भड़काने वाला आकाश जब रोमांटिक होगा तो उसका रोमांस इस हद तक सामने आएगा। वो मुस्कुराते हुए अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और माथे पर बिंदी लगा के उसने खुद को आईने में देखा। सच में आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब वो आकाश के साथ कहीं बाहर जाएगी। वो कितनी देर से आईने के सामने मुस्कुराते हुए तैयार हो रही थी। इस बात से अनजान की दरवाजे पर खड़ी अरुणिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसे इस तरीके से खुश देखकर अरुणिमा के दिल को बहुत सुकून मिलता है। उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब वो नई नई शादी करके इस महल में आई थी, लेकिन उसे कभी भी मौका नहीं मिला था इस तरीके से श्रृंगार करने का। बल्कि उसका श्रृंगार तो आस्तिक अपने हाथों से ही करता था, और जितनी खूबसूरती से वो उसे दिन में सजाता था, उतनी बदसूरती के साथ वो रात में उसके सारे श्रृंगार को निकालकर फेंक दिया करता था। अपने पुराने दिनों को याद करके अरुणिमा एक बार फिर से दहक जाती है, लेकिन वो भूमि को देखकर अपने मन में कहती है, भगवान बस इस बच्चे की जिंदगी में कभी ऐसा दिन मत लाना कि इसे मेरे फैसले पर पछतावा हो। मुझे नहीं पता कि क्या सोचकर उस समय मैंने भूमि और आकाश की शादी करवाई। मैं बस भूमि को इस घर की बहू बनाना चाहती थी और इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शुरू शुरू में तो मुझे लग रहा था कि मैंने भूमि की जिंदगी खराब कर दी उसे आकाश से शादी करने पर मजबूर करके, पर अब मुझे लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। आकाश और भूमि का रिश्ता सुधर रहा है। मुझे खुशी है कि आकाश को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है और वो भूमि के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहा है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि वो भूमि को उस समय के हसीन एहसासों में परेशान नहीं करना चाहती थी। भूमि तैयार होकर अपनी जगह से खड़ी होती है और खुद ही को आईने में देखकर शर्माने लगती है। वो रिसीवर के पास आती है और फोन उठाकर आकाश को फोन करने लगती है ताकि उससे पूछ सके कि वो कितनी देर में घर आ रहा है। दो रिंग के बाद ही आकाश ने फोन उठाया और भूमि से कहने लगा, मुझे पता ही था कि तुम मुझे फोन करोगी। भूमि मुस्कुराते हुए शर्मा जाती है और कहती है, जी वो मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप घर कब तक आ रहे हैं, मैं तैयार हो गई हूँ।
ऑफिस में बैठा हुआ आकाश एक पेपर वेट को अपने हाथों में घुमाते हुए कहता है, मुझे पता था वाइफी कि तुम टाइम पर तैयार हो जाओगी, पर क्या करूं, तुम्हारा हस्बैंड लेट लतीफ है, उसके पास नया नया प्रोजेक्ट आया है और काम इतना है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। आकाश की बात सुनकर भूमि का खिला हुआ चेहरा हल्का सा मायूस हो जाता है और उसने कहा, अच्छा काम ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों डिनर पर बाहर नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम से काम कर लीजिए, हम दोनों फिर कभी चले जाएंगे।